ओम शांति। यो तो ब्राह्मण जीवन अनुभवों का ही जीवन है। क्योंकि जब चैतन्यता आती है तब आत्मा की जो जड़ता है, देह भानवश जो जड़ता डोमिनेट कर जाती है और आत्मा अपनी चैतन्यता को भूल क्या पता ही नहीं होता कि चैतन्य हूं मैं, तो वो धीरे धीरे इमर्ज होने लगती है। लेकिन ये जो ब्राह्मण जीवन है इसमें हम उन चैतन्य स्वरूपों को जो हमने सृष्टि के आदि से लेकर अंत तक अनुभव में लाए हैं उनको हम फिर से इमर्ज करते हैं। वंडर है कि एक जन्म के अलग अलग रूपों को जब हम देखते हैं तो फीलिंग आती है, बार बार फीलिंग आती है। कभी कोई छोटे बच्चे की अपनी एल्बम खोले जब हम बहुत बेबी थे, फिर जब हम स्कूल गोइंग हुए, फिर जब हम और बड़े हुए, हाँ फिर मैरिज भी हुई कईयों की, फिर किसी के बच्चे भी हुए, फिर बुजुर्ग भी हुए, फिर जब अपनी वो फोटोज देखते हैं तो अपने आप वो स्मृतियां इमर्ज होने लगते हैं, लाना नहीं पड़ता। लेकिन यहां इस जीवन में जब बार बार ध्यान खिंचवाया जाता है अनादि स्वरूप का, देवता स्वरूप का, वो यादें वो बातें चित्रों के माध्यम से, चरित्रों के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से बताई जाते हैं, इतनी अच्छी तरह तो फिर भी उसे जीवन स्वीकार नहीं करता है जितनी अच्छी तरह वो एक जन्म के अलग अलग जो हमने देखी बातें उनको हम ताजा कर लेते हैं और स्वीकार करते हैं कि ये तो मैं हूं, है ना। जब वो पिक्चर देखते हैं समझो तो बताएंगे कि इस पूरी पिक्चर में ही मैं हूं, है ना। समझो छोटा बेबी भी हूं, इतना छोटा सा हूं, है ना, तो बता देंगे ये वाला जो पिक्चर है ना ये मेरा है। फिर जब वो बातें जो बाबा याद दिलाते हैं तो वो तो हम कोशिश कर रहे होते हैं इमर्ज करने की, फिर क्या होता है कि वो कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं और कई बार तो वही चले जाते हैं, है ना, वो जो याद है उसमें। और ये युद्ध, ये कश्मकश एक दिन नहीं चलती है, रोज चलती है। तो ब्राह्मण जन्म में आते हैं तो जैसे युद्ध के मैदान पे आ जाते हैं, तो रोज जैसे बाबा याद दिलाए हम भूले, वो याद दिलाए हम भूले, तो ये जो कुरुक्षेत्र का मैदान है यानी कर्म क्षेत्र का मैदान है जहां एक तरफ तो कर्म इंद्रियां बार बार याद दिलाती हैं कि मैं हूं और दूसरी तरफ बाबा याद दिलाता है कि नहीं ये सत्य है, तो सत्य और असत्य का ये युद्ध रोज चलता है। और सबका एक ही टारगेट है कि इस युद्ध के अंदर हम जीत जाएं, है ना। सबका एक ही टारगेट है कि हम विजयी बन जाएं, सफलता मूर्त बन जाएं, माया जीत बन जाएं। तो जीतने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया के अंदर जब युद्ध स्तर होता है तो दोनों पक्ष तैयारी करते हैं, तैयारी कर हो रही है ना अभी भी दुनिया के अंदर, सब तैयार है थर्ड वर्ल्ड वॉर के लिए, है ना। वर्ल्ड वॉर रेडी है, कहो तो हो ही रही है, शुरू हो चुकी है कहेंगे एक तरह से। तो सब लोग तैयार हैं, उनकी तैयारी तो अपनी है, पर एक तरफ वो वॉर है और एक तरफ ये वॉर है। दोनों में जीत किसकी होगी वो तो सबको पता है, खास हम आत्माओं को तो पता है, पर माया जीत बनने के अस्त्र शस्त्र जो हमारे हैं वो रेडी हैं, हम चला रहे हैं और चलाते चलाते अनुभवी मूरत बन गए हैं, और जब हमें जरूरत होगी उनकी तब हम उस टाइम पर उन्हें परफेक्टली चला सके, वो काम करे और जीत जाए। उसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस चाहिए। और बाबा ने कहा है कि बच्चे एग्जाम तो हमारा कितनी देर का है, हाँ एक ही सेकंड का है, बात ही सारी एक सेकंड की है। उस समय तीर निशाने पे लगा तो ठीक, और नहीं लगा तो फेल, है ना। तो कितनी प्रैक्टिस चाहिए। और अभी तो अगर योग लगाते हैं फिर युद्ध होती है, फिर जीत पाते हैं, फिर योग लगाते हैं फिर भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ खींचा तान है ही माया की। एक तरफ तो हम बाबा कहते हैं कि बच्चे मेरा कौन, बाबा है, है ना। तो मेरा तो एक बाबा है, बाबा के सामने तो सच में ऐसी अवस्था होती है कि उस समय तो दुनिया नहीं होती है साथ में, बस बाबा होता है। लेकिन फिर बोलते भी है ना, बाबा ही मेरा संसार है, है ना। फिर एक तरफ तो बाबा ही संसार है ना, संसार तो बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन वो सारा संसार हम कहते हैं कि अभी आप हो। इस समय मेरा सारा माइंड, मेरे सारा इंटेलेक्ट, मेरी हर चीज इस समय, मेरे स्थूल सूक्ष्म नेत्र, है ना, मेरे बुद्धि का नेत्र, मेरे संकल्प, सब आप हो इस समय और कुछ नहीं है। तो एक तरफ तो कहेंगे बाबा संसार है, फिर जो बीच में आते हैं वो क्या है, वो क्या है, वो हमारे संस्कार है, है ना। तो वो जो संस्कार बीच में आ जाते हैं ना, तो उस संसार से जिसे हमने मान लिया है वो बीच में आकर उसे दूर कर देते हैं। तो संसार और मेरे बीच में मेरे ही संस्कार माया बनकर मुझे कमजोर करते हैं, और वो जो मेरे संस्कार हैं वो तो मेरे हैं, है ना, वो संसार भी मेरा है। तो दोनों को मैंने अपना बना लिया है, वो संसार भी मेरा है, वो संस्कार भी मेरे हैं, है ना। क्योंकि हमने तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग में ये सब दोनों से मिले हैं ना। बाबा वाले गुण भी थे और रावण वाले गुण भी थे, तो दोनों चीजों को अपना बना रखा है। और अब वो सतयुग त्रेता वाले और द्वापर कलयुग वाले संगम पर दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर चल रही है, है ना। अब जीत पाने के लिए, उसके लिए तो एक ही से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा ना। दो से लड़ाई दोनों पक्षों के तो नहीं हो सकते हम, है ना। और जब पता है कि जीत जिसकी हो रही है और पता है जिसका समय आने वाला है ना, तो बुद्धि कहती है कि उसी की तरफ हो जाओ जो जीत होने वाली है, जो समय आने वाला है ना। तो अभी तो हमारा राज्य आने वाला है, पर जो ये दिक्कत है इसको दूर करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारे ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र दिए हैं। और उसमें जो बहुत इम्पोर्टेंट शस्त्र है जिसको कहते हैं ना, स्वदर्शन चक्र घुमाया है ना। बाकी सबके हाथ में तो तीर कमान है महाभारत के युद्ध में ना, पर कृष्ण के हाथ में तो चक्री है ना। और वो उसी से ही एक बारी में ही निशाने पे लगता है वो, और करके फिर दोबारा उसके हाथ में आ जाता है। और वैसे भी सच कहें तो बहुत सारी यादगारें भक्ति मार्ग में हमारे इन स्वदर्शन चक्र के पांच स्वरूपों के बारे में कई जगह हैं, स्थान तक बने हुए हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि हमने किया है और जीत पाई है। और मुझे पता है कि ये सबको पता होगा, एक बहुत सारे पुराने पुराण पढ़ते हैं ना, तो एक ब्रह्म पुराण भी है, ब्रह्मा पुराण, जिसमें ब्रह्मा की उत्पत्ति और ब्रह्मा ने क्या क्या किया उसके बारे में लिखा है। और उसमें बताते हैं कि ब्रह्मा के, अभी तो दिखाते हैं ना चित्रों में, चार मुख हैं, है ना, लेकिन बताते हैं कि असली में ब्रह्मा के पांच मुख थे, 5 faces ना। तो पांच मुख थे, उनमें से जो पांचवा मुख था वो उसमें दिखाते हैं कि शिव ने वो काट दिया था। उसकी भी एक स्टोरी है ना, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। भक्ति मार्ग में तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती है ना, ना तो अच्छी लगती है सुनने। तो बताते हैं कि एक वो जो ब्रह्मा पुराण में जो बताते हैं स्टोरी, तो कहते हैं कि एक बारी असुरों की और देवताओं की युद्ध हुआ। तो उसके अंदर जो हमेशा ऐसे ही होता है, असुर जो होते हैं वो देवताओं के ऊपर हावी होने लगते हैं। फिर क्या होता है, वो देवताएं कहाँ जाते हैं? पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तो पहले ब्रह्मा जी के पास गए और फिर ब्रह्मा जी कहते कि अभी जाओ आप शिव के पास जाओ, तो वो आपकी मदद करेंगे। तो शिव के पास जाते हैं तो शिव उनकी मदद करते हैं। तो वो मदद करने की भी लंबी कहानी है, पर होल सोल ये है कि मदद करते हैं और डर के मारे वो जो असुर हैं वो धीरे धीरे, क्योंकि कहते हैं कि उसमें तो ये दिखाते हैं ना कि स्वर्ग में रहते हैं देवता है और वो ऊपर होते हैं आकाश में, आसमान में, तो वो धीरे धीरे फिर डर के बाद बार बार वो धीरे धीरे असुर फिर से अपने पाताल लोक की तरफ वापस जाने लगते हैं। तो कहते हैं उस समय ब्रह्मा का जो पांचवा मुख था ना, कहते वो डोंकी का मुख था, तो वो उनको गाइड करता है कि आप नहीं नहीं मैं आपके साथ हूं, आप चलो फिर से युद्ध करो, असुरों को कह रहा होता है। तो ये देखकर देवताएं फिर शिव के पास जाते हैं। तो शिव और शंकर को वो तो एक ही मानते हैं कि वो भी मारता है ना, तो फिर वो शिव जो है उसका वो डोंकी वाला जो गर्दन होती है, वो जो फेस होता है, उसे वो काट देते हैं। पर उससे पहले, उस फेस को काटने से पहले भी बहुत सारी बातें होती हैं कि वो धरती पर गिरेगा तो धरती नहीं सहेगी, फिर क्योंकि वहां सब जगह पानी हो जाएगा, तो ऐसी कई बातें। तो होल सोल कहने का अर्थ है कि उस स्थान की यादगार, उस बात की यादगार भी भक्ति मार्ग में बहुत सारे तीर्थ स्थान भी बनाए हैं। तो रुद्रेश्वर जैसे कहते हैं, ऐसे तीर्थ स्थान हैं हमारे भारत देश के अंदर हमारी यादगारें बहुत हैं, लेकिन हमें यादगारें, एक होते यादगार बन जाना, पर दूसरा हमने जो याद किया और उस याद से कैसे हमने अपने अंदर के विकारों का गला काटा, शिव बाबा की याद से। वो यादगारें तभी बनी जब हमने किया, लेकिन हम करते तब हैं जब हमें उन सब चीजों का अनुभव स्मृति में आता है। लेकिन जब तक हमें वो अनुभव स्मृति में नहीं आता कि ये मैं ही हूं, वो फीलिंग्स नहीं आती, तब तक पुरुषार्थ करने के लिए दृढ़ता भी नहीं आती। क्योंकि जब लगता है कि जब ब्राह्मण जीवन में भी सभी आते हैं तो लगता है ये वही है जिसकी मैं तलाश कर रहा था, तो क्योंकि हमने पहले भी ये किया है तो वो पहले वाली स्मृति इमर्ज होती है, और जब वो स्मृति इमर्ज होती है तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब तक वो स्मृति इमर्ज नहीं होती तब तक हम उन स्वरूपों में आने का, उसको बार बार लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे नहीं होता कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये कैसे मैं हूं, है ना? क्योंकि हमने 63 जन्म तो वही मूर्तियों की पूजा करी है। अभी कोई कहता है कि ये तुम हो, ये तुम्हारी मूर्ति है, तो दिक्कत क्या होती है कि भक्ति मार्ग में भी क्या हुआ, हमने उन मूर्तियों को स्वीकार किया, ऐसा नहीं स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया, तो मूर्तियां तो हैं वहां पर, और वो है 5 तत्वों की, वो भी 5 तत्वों की है, चैतन्यता नहीं है, तो 5 तत्वों की बनी हुई वो मूर्तियां हैं, उन मूर्तियों को मैंने स्वीकार किया है भक्ति मार्ग में भी। अभी भी हम सभी लोगों को स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि दिखते हैं, लेकिन ये मैं हूं ये स्वीकार करना, ये स्वीकार नहीं होता। एक होता है कि हाँ ये स्वीकार करना कि ये थे, और एक होता है कि ये स्वीकार करना कि ये मैं हूं, उसमें अंतर आ जाता है। जड़ता को स्वीकार करना ये तो हमने पहले भी किया, पर अपने आप को उस चैतन्य स्वरूप में स्वीकार करना, उन्हीं गुणों और शक्तियों को के साथ स्वीकार करना, वो है इंपॉर्टेंट चीज। और जब तक वो नहीं है तब तक केवल हमारा मेहनत है, बार बार मेहनत है। जब हम छोटे थे ना, इंडिया में एक कल्चर है, आप सबको भी थोड़ा अनुभव होगा घरों में, तो क्या होता है कि जब नवरात्रे होते हैं तो अष्टमी में बहनों को, कुमारियों को ना देवी समझते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं, उनके पैर भी धोते हैं, है ना? माताओं को तो अनुभव है ना, कईयों को तो नराते होते हैं, तो उनको देवियां समझ के उनकी पूजा करते हैं, पैर धोते हैं, उनको अच्छा भोजन खिलाते हैं, तो बहुत अच्छी। और फिर क्या होता है, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, पैर भी उनके पड़ते हैं, और फिर वो देवियां उनको आशीर्वाद देती हैं, उनके पीठ पर ऐसे मारती हैं। तो उस समय बच्चे तो खेल पाल में कर देते हैं और उनको देवियां भी वो स्वीकार करते हैं, पर हम बच्चे अपने आप को देवी के रूप में स्वीकार करते हैं। वो तो क्या होता है कि अनमैरिड होते हैं, बच्चों को जैसा बताया जाए वैसे करते हैं, पर यादगारें तो हमारी है ना, कि जब हम पवित्र थे तो हमारी पूजा होती थी, तो हमें याद है कि जब हम छोटे थे तो हमें लगता था ऐसे कि ये मैं ही हूं, तो ये अनुभव जो होता है ना इंसान का, वो उसको बहुत काम करता है। उस समय तो फीलिंग आती है कि ये मैं हूं। फिर क्या होता है इंडिया के अंदर, आप सब ने भी अनुभव किया होगा, जगराते होते हैं, है ना, तो जागरण करते हैं ना, जागरण करते हैं, माता का जागरण होता है, तो जागरण पे उसके भक्त लोग गुणगान करते हैं, और जब गुणगान करते हैं तो बार 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 जोर जोर से जय माता दी करते हैं। तो ये फीलिंग मुझे आज भी याद है कि उस समय बहुत छोटे थे पर फीलिंग आती थी कि ये मैं ही हूं। तो फिर वो माता पिता कहते हैं जाके उन पर ना पैसे दे के चढ़ा कर आओ, फिर ये डाल कर आओ। तो फिर मुझे लगता था कि ये तो मैं ही हूं, फिर क्यों डालें। तो लेकिन क्या नहीं सकते ना, अगर कुछ कहेंगे तो सोचेंगे ये तो है ना, ये तो क्या बातें करती है ना, तो ऐसा मन में आता था। तो ये जो पांच स्वरूपों की ड्रिल है, मुझे जब हम ज्ञान में आए तो इतना अच्छा लगा, क्योंकि छोटे होने से ही हमें बाबा ने बहुत सारे अनुभव इन पांचों स्वरूपों के कराए थे, तो जैसे ड्रिल करते ही थे, तो इसलिए जब ज्ञान में आए तो बहुत ही सहज हुआ, निराकारी स्वरूप और देवता स्वरूप, और फिर देवी का स्वरूप भक्ति मार्ग में जयकारे लगा रहे हैं, फिर संगम युग का स्वरूप, वो भी बाबा ने अनुभव कराया था स्वप्नों में, बहुत अच्छे। तो जब पांचों स्वरूपों की ड्रिल हुई, क्योंकि मुझे याद है विशेष बाबा ने 2010 में, 10 और 11 में बाबा ने बहुत दफा सभी को ये होमवर्क दिया कि बच्चे ये पांच स्वरूपों की ड्रिल जरूर करो, क्यों कि ये जो ड्रिल है यही आपको अंतिम समय में, जो अंतिम पेपर है एक सेकंड का, उसमें जीत पहनाने के लिए ये सबसे नंबर वन शस्त्र है। इसी ड्रिल से ही हम जीत प्राप्त करेंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन ही मन का है ना। तो वो जो स्मृति है, जो हम कहते हैं कि स्मृति लब्धा या स्मृति स्वरूप बनना, तो वो तब होगा जब मन जो स्मृति कर रहा है, जिसकी यादों जो याद कर रहा है, उस पर मेरा फुल कंट्रोल हो। पर वो कंट्रोलिंग पावर, वो रूलिंग पावर आती तब है जब हमें बार 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 प्रैक्टिस हो। गाड़ी चलाते हैं तो प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है ना, तो बार बार गाड़ी चलाते हैं, बार बार कोई काम करते हैं, है ना, तो फिर उस चीज में परफेक्शन आती है। तो बाबा ने पहले एक दफा कहा कि दिन में बार बार हर एक घंटे में पांच सेकंड, पहले का पांच सेकंड में पांचों स्वरूपों की ड्रिल करो, है ना, फिर का चलो कोई बात नहीं पांच मिनट में करो, है ना। पर हम सब ने उस समय नहीं कर पाए, तो बाबा ने धीरे 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 धीरे, अच्छा 24 बारी नहीं होता है, 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 दफा नहीं होता है, तो चलो और कम कर दिए, 15 कर दिए, 15 से और कर दिए कम। तो कम करते करते बच्चों को कहा कम से कम 8 दफा तो करो ना। तो मुझे याद है कि उन दिनों पर ये हमने बहुत अच्छा, बाबा ने जो होमवर्क दिया, खुशी होती है ना करते हैं, तो पूरा किया। बाबा ने 15 दिन का टाइम दिया, पर इन 15 दिनों के अंदर जो किया उसके बाद जो हुआ, दैट इज मस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब कर लेते हैं तो शुरू में क्या करते हैं, एक धुन के साथ करते हैं कि करना है, मतलब बस होमवर्क दिया और करना है। ऐसा नहीं होता कि हम मतलब जैसे जैसे बच्चा रटता है ना, तो उस तरीके से करते हैं, एक एक स्वरूप को स्वीकार करके करना नहीं, फिर तो यह है कि कम से कम 8 दफा पूरा हो जाए, है ना, तो पूरा करने के हिसाब से, एक बार सुबह, एक बार फिर दोपहर को, फिर भोजन के टाइम। लेकिन जब आप बार बार करते हो तो वो जो आपकी लगन होती है ना, वो आपको मदद करती है कि आप फिर एक आधी दफा उसको अनुभव मूर्ति अनुभवी मूर्त बनकर फिर उस चीज को अपने जीवन के अंदर ऐसे स्वीकार करो कि मैं हूं। तो पहला स्वरूप हमारा वो कौन सा है? अनादि स्वरूप, ज्योति स्वरूप, अनादि स्वरूप, जो हम अपने घर में थे। तो वो स्वरूप, जब जैसे ही हम उस स्वरूप में आते हैं, बिंदु की स्वरूप में आते हैं, तो कैसा लगता है? निश्चिंत है। अभी देखो, जब ये स्वीकार करते कि मैं निश्चिंत हूं, ये भी बॉडी कॉन्शियस है ना, क्योंकि निश्चिंत तो चिंता के अगेंस्ट है ना। अब इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब मैं बिंदु हूं तो कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, आई एम फ्री। शांति भी है, पर इस शांति को भी हम शांति कह नहीं सकते। होता क्या है कि जैसे ही हम आत्मिक स्वरूप में आते हैं, तो हम जो बातें करते हैं और जो हम फीलिंग करने की कोशिश करते हैं, वो भी बॉडी कॉन्शियस से थोड़ी थोड़ी मिलती हैं, तो टोटली डिटैच नहीं हो पाते। तो वो जो टोटल डिटैचमेंट की स्टेज है, जिसमें आपको कुछ भी याद नहीं है, जरा सा भी याद नहीं है, वो स्टेज यानी अभी तक कनेक्शन टूटा नहीं है नीचे से। तो जब तक वो कनेक्शन टूटा नहीं है, तब तक वो स्वरूप एग्जैक्ट क्या है, यानी वो डिटैचमेंट की स्टेज एग्जैक्ट क्या है, उसकी फीलिंग नहीं आ पाती। अच्छा, अभी एक मिनट के लिए हम सभी, क्योंकि यहां तो सब फ्री है ना, तो ऐसा फील करते हैं कि हम सब ने शरीर छोड़ दिया है ना। एक है मर जीवा, एक होता है मर गए, है ना। तो हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि अभी अभी हम सभी ने इच्छा मृत्यु को प्राप्त करना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेज है कि हम सच में तैयार हैं मरने के लिए। वो गीत है ना, मरना भी तेरी गली में, तो उसकी गली में बैठे हैं इस समय, इससे अच्छा स्थान नहीं हो सकता, है ना, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, है ना। तो अभी अभी हम, कहने का अर्थ है कि जब भी बैठे यही सोच के बैठे कि अभी मैं आत्मा रेडी हूं, और उस समय आप चेक करना कि आपके मन में कौन आता है, वो आपकी लाइफ के अंदर आपका कर्म बंधन है। रिकॉग्नाइज करें उस समय, जिस समय हम ये सोच लें कि आई एम रेडी टू डाई, उसी समय, क्योंकि दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस कि हमें मरना है, तो उस समय जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान हमें याद आ रहा है, जो काम याद आ रहा है, वो इस समय आपकी जिंदगी का आपका सबसे बड़ा कर्म बंधन है। और अगर नहीं याद आ रहा, तो हम बहुत बहुत फॉर्चुनेट हैं, एटलीस्ट इस समय, है ना। तो हमेशा जैसे रेडी, तो अभी रेडी, रेडी टू डाई, ओके, ठीक है। ये घड़ी, ये पल, मेरे जीवन का अंतिम पल है। इस अंतिम पल में मैं केवल और केवल अपने पिता को, मुझे उसके साथ जाना है। स्वीकार करें, इन पंच तत्वों के पिंड के बीच शरीर के मस्तक के बिल्कुल बीच मैं तैयार हूं। इन तत्वों को छोड़ने के लिए एकदम तैयार। देखो इस घर को छोड़, पुराने घर को छोड़, मैं उड़ चली अपने असली घर। ऊपर बादलों को पवित्र ब्रह्म महातत्व में मैं अखंड शांति के बीच लाइट हूं। ईश्वरीय गुणों से सुसज्जित परमात्मा समान मास्टर शांति सागर हूं। यही मैं हूं। इसी की प्रैक्टिस है। जब बार बार वो अनुभव हम करते हैं तो वो मुझे प्यारा लगने लगता है, फिर थोड़े समय के बाद ऑटोमेटिकली बुद्धि वहां जाती है। इम्पोर्टेंट क्या है कि जब हम उस चीज को अनुभव करते हैं तो जैसे टेस्ट आता है ना, ना, तो कोई चीज टेस्टी लगती है, तो फिर उसको बार बार आपको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे खाना है, कैसे बनाना है, नहीं। जैसे ही उस चीज की लगन लग जाएगी, अपने आप बुद्धि और मन ऑटोमेटिक वैसा ही अनुभव बैठे बैठे करेगा अपने आप। जैसे हम अपने इस शरीर का अनुभव, छोटेपन का अनुभव बैठे बैठे कई बार तस्वीर देखकर, कई बार किसी की बातें भी सुनकर ऑटोमेटिकली वैसा ही अनुभव करने लग जाते हैं, तो उस समय हम तस्वीर का सहारा लेते हैं। लेकिन यहां भी आत्मा ने अनेक बार ये अनुभव किया है, तो जैसे ही ये अनुभूति हमें हमारे उस टच कर जाती है, मन के उस कोने को टच कर जाती है जहां हमें वो स्मृति पक्की हो जाती है कि हाँ ये मेरा घर है, तो तुरंत ही जैसे ही आप फ्री होगे, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा मैं वहां चले जाऊं। थोड़ा सा फ्री होंगे, मन करेगा वहां चले जाऊं, क्योंकि वो चीज आपको बहुत पसंद है, लाइक करते हो आप उसे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं उसको लाइक करूं। लाइक करने के लिए मुझे बार 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 उस चीज को फिर से टेस्ट मिलाना पड़ेगा, क्योंकि है तो वो सर्वोच्च, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऐसी जगह जो इस संसार के अंदर ऐसी पवित्रता है ना, जिस जहां ऐसी पावर इस संसार में नहीं है। लेकिन जब तक वो लाइकिंग, वो प्यार इमर्ज नहीं होता, तब तक वो गैप रहता है, क्योंकि मेरे ही इस दुनिया के संस्कार मुझे उस संसार में जाने नहीं देते। तो जैसे ही वो चीज उस पर डोमिनेट करेगी, तुरंत बुद्धि टिकेगी। तो ये ड्रिल तो करनी है, शुरू में विद कमेंट्री एंड लेटर ऑन फिर अपने आप जाएगी ऑटोमेटिक ना। इसके बाद हमें पता है कि अनादि स्वरूप के बाद आता है हमारा आदि स्वरूप, यानी देवता स्वरूप। यहां भी एक बहुत बड़ी बात आ जाती है कि हम सब स्वीकार करते हैं कि हम ही सतयुग में थे, हम ही त्रेता में थे, हमारे में ही दिव्य गुण थे। पर फिर ये भी स्वीकार करते हैं कि जब रावण आया तो हमारे ही दिव्य गुण खराब हो चुके हैं। अब ये टोटल कंट्रास्ट सिचुएशन है। अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से होकर गुजर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली अपने आप को उस पवित्र स्वरूप में दो स्वरूप हैं। एक है बाह्य स्वरूप, वो तो अभी भी क्या है, जब प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशंस लगते हैं ना जब, तो फिर कई बार चैतन्य भी देवी देवताओं के मेले वेले में दिखाते हैं, तो देवी बना देते हैं, है ना, प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो बाह्य स्वरूप तो है ना बहुत अच्छा बन सकता है ना, फिर बाबा ने भी फोटो खिंचवाई थी कि फोटो देखो फिर आपको याद आएगा। तो एक होता है बाह्य स्वरूप, इंटरनली सोल में क्या चेंजेस आए, है ना, दो जगह चेंजेस आ रहे हैं ना, एक है बाह्य चेंज और एक होता है मेरा चेंज। सोल में क्या चेंजेस आए, सोल के अंदर चेंजेस तो वही है, ऑर्गन्स तो वही है, पावर्स तो वही है, माइंड इंटेलेक्ट और संस्कार, लेकिन तीनों के अंदर जो चेंजेस आए, जो हमारी सोच बदली, जो हमारी बुद्धि में डिविनिटी आई है ना, जो प्योरिटी आई, जो संस्कार दैवी गुण वाले बन गए, अब वो भी इमर्ज करने बहुत जरूरी है। और जब तक वो इमर्ज नहीं होंगे, तब तक बाह्य रूप से हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि मैं, मेरा स्वरूप कैसा है, ऐसा ही होता है ना, हम बाह्य रूप से उसे विजुलाइज कर रहे होते हैं कि हमारे सिर पर ताज है रतन जड़ित, है ना, और यहाँ लाइट का भी ताज है। फिर हम ये भी स्वीकार कर रहे होते कि हाँ भाई, हम रतन रत्नों के हीरे जवाहरातों से सजे हुए हैं, सिंहासन पर बैठे हुए हैं, है ना, ताज तिलक तख्त पे बैठे हैं, वो सब हम विजुअलाइज करते हैं, क्योंकि अभी तो चैनल्स के माध्यम से और भी बहुत सारी पिक्चर्स हैं हमारे सामने, तो देख देख के उसको हम कहते हैं हाँ दिस ये मैं हूँ। बट इंटरनली क्या मेरी बुद्धि वहीं पहुंच गई है, वहां मैं पहुंच गया हूँ, क्या मैंने ये स्वीकार कर लिया है कि ये सब मेरे सामने जो है ये सभी देवी देवताएं हैं। क्योंकि जब बाप दादा आते हैं तो हमें जिस स्वरूप से देखते हैं तो इतने अच्छे स्वरूप से देखते हैं कि हमारा चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो हमें देखते हैं एक्चुअली में। अगर वो हमारे वर्तमान स्वरूप को देखते बाबा, तो फिर तो बाबा का ही मूड ऑफ हो जाता तो लेकिन नहीं, क्योंकि बाबा हमें उस स्वरूप से देखते हैं जो हमारा रियल स्वरूप था इस धरती पर, तो वही चेंजेस आते हैं। तो ये है बाबा का मन, बाबा की बुद्धि और बाबा के संस्कार जो ओरिजिनलिटी को देखते हैं, और हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारे संस्कार ऐसे हैं जो हम उस दौर से गुजर भी चुके हैं, हम देख चुके हैं अपने आप को, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनुभव रीमर्ज हो जाए, वो प्योरिटी वाली स्टेज अभी है नहीं, पर एटलीस्ट हम उस चीज को इमर्ज कर सके, उस अनुभव को फिर से रीमर्ज कर सके, वो फीलिंग्स में आ सके, है ना। तो वो फीलिंग्स में आना, जैसे कहीं से होकर आए, घूम कर आए और फिर जब फोटो देखी तो वो फीलिंग्स में आ जाते हैं, है ना, किसी फंक्शन से होकर आए, कोई प्रोग्राम से, तो वो बिल्कुल वही फीलिंग्स, वही एंथुजियाज्म, वही सब कुछ, है ना। बाबा कई बारी पुरानी मुरली चला दे और उस समय से हम भी गुजर चुके हों तो फिर से वही आ जाते हैं उसी दौर में, है ना। तो हम फिर से सत्ययुगी आत्मिक स्टेज में आ जाएं, उस हाईएस्ट प्योरिटी के लेवल पे आ जाएं, वो इम्पोर्टेंट है। तो जब जैसे ही बाबा, हम अपने बाबा कहते हैं आदि स्वरूप में आ जाओ, तो जैसे ही हम स्वीकार करें कि मैं अपने आदि स्वरूप में हूं, तो वो जो ऊपर का स्वरूप था जहां मैं बाबा जैसे स्वरूप में थी, फिर उन गुणों को पंच तत्वों के माध्यम से कैसे आत्मा प्रकृति को, इस सृष्टि को दे रही है सतयुग के अंदर, कैसे वो जो ईश्वरीय गुण है वो दिव्य गुणों के रूप में है, वही आत्मा, लेकिन वहां पर हमारी क्वालिटी है कि आप क्या हो, बाबा वाली क्वालिटी, मास्टर प्यार के सागर, मास्टर सुख के सागर, शांति के सागर। फिर जब यहां आते हैं तो सर्व गुणों में संपन्न हो जाते हैं, 16 कलाओं में संपूर्ण हो जाते हैं। वही क्वालिटी जब पांच तत्वों के कांटेक्ट में आती है तो वो गुणों के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से इस सृष्टि के अंदर फैलती है, हम देते हैं, इसलिए देवता है, हम इस सृष्टि को देते हैं, तो देना शुरू कर देते हैं। पर वो स्मृति की हमारे अंदर जो प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज है, वो सारे वातावरण को ना, संपूर्ण प्रकृति को पवित्र, वो भी पवित्र है, वो भी अपनी हाईएस्ट स्टेज पे है, लेकिन उनको भी चैतन्यता जो प्रदान कर रही है वो हमारी पवित्रता है, है ना, है वो सब जड़, पर फिर भी वो फीलिंग्स दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो स्वीकार कर रही है आत्माएं, वो अपनी फुल चैतन्य अवस्था में है। तो हम जब सतयुगी स्थिति को अनुभव करते हैं तो प्रैक्टिकली अनुभव करना है अपनी इंटरनल स्टेज को, अपने अंदर की प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज को। तो अभी एक मिनट के लिए सभी कहां पहुंचेंगे? हाँ, सतयुग में पाएंगे, आदि स्वरूप में। ठीक है, रेडी? ओके, माताएं जो खड़ी हैं बैठ जाएं सभी भाई बहने। तो सतयुग में चीजों को देखेंगे नहीं, फील करेंगे। अपने को भी देखेंगे नहीं, फील करेंगे, क्योंकि दिखेगी, सबको दिखेगी, पर दृष्टि ऐसी है, इतनी प्योर है कि वो दिखने वाले चीज को भी स्वीकार नहीं करती है। इतनी डिटैच्ड स्टेज है कि सब दिख रहा है, मैं भी दिख रही हूं, सब कुछ दिख रहा है, पर वो, और सब चीजें परफेक्ट हैं, पर फिर भी मैं उसको देखते हुए भी जैसे अंदर नहीं ले रही हूं। इतनी हाईएस्ट प्योरिटी की स्टेज है। तो अपने आप को अपनी हाईएस्ट प्योरिटी की स्टेज में फील करें, महसूस करें परम धाम से। मैं आत्मा, धीरे धीरे इस पृथ्वी पर पंच तत्वों के सुंदर शरीर में प्रवेश कर रही हूं। चारों तरफ शक्तिशाली संपूर्ण पंच तत्व मेरे इस आगमन पर प्रसन्न है। ये शरीर मुझे अपने अंतर के गुणों को, शक्तियों को बयां करने के लिए समस्त सृष्टि को सुजाग करने के लिए प्रदान किया गया है। मस्तक सिंहासन पर मैं दिव्य गुणों से सुसज्जित परम पवित्र आत्मा हूं। सर्वगुण संपन्न हूं। 16 कला संपूर्ण हूं। संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा मेरा परम धर्म है, ये मैं हूं। परम पवित्र, शुद्ध, दिव्य बुद्धि से सुसज्जित देवात्मा हूं मैं। प्रकाश, का एक सुंदर आभा मंडल, महसूस करें अपनी इस पवित्र स्थिति को। अपने अंतर की प्योरिटी को, स्थूल शरीर में चमकते हुए रत्नों को देख रही हूं मैं, पर मुझसे ज्यादा चमकदार नहीं है कोई रत्न इस जहां में भी। मैं इन रत्नों का मालिक, सूक्ष्म शक्तियों के अधिकारी, शक्तिशाली दिव्यात्मा देवात्मा हूं। तो एक है दिव्य स्वरूप, फिर किस समय की लिमिट है तो स्पीड से बढ़ाते हैं। तीसरा स्वरूप नीचे आ जाए, चक्र और घुमाए, कहाँ आएंगे? द्वापर में आ जाते, और द्वापर में तो बहुत सारे मंदिर हैं। हाँ, अभी तो इतने हो गए हैं, जैसे बाबा कहते ना, गली गली में सेवा केंद्र होंगे, तो ऐसे गली गली में अभी मंदिर बने हुए हैं। तो कैसे बने गली गली में मंदिर? गली गली में एक देवी तो होगी ना, है ना? तो हर गली में देवी और देवताएं होंगे, तभी तो यादगार में गली गली में मंदिर बनेंगे ना। तो सत्य तो है, लेकिन अपने आप को उस जड़ मूर्ति की जगह स्वीकार करना। यूं तो दुनिया में भी क्या होता है कि प्राण प्रत्यक्षता करते हैं, तो उस जड़ मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्रोच्चारण करते हैं। तो मंत्रोच्चारण से उस, कहते हैं, उस जड़ मूर्ति में चैतन्यता आ जाती है, और फिर वो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। लॉजिक तो नहीं कहता है, बुद्धि तो नहीं कहती है, पर मंत्र से क्या होता है उसके बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। तो लॉजिक तो नहीं कहता कि ऐसे जड़ मूर्ति देती है किसी को, पर प्रैक्टिकल बात क्या है कि जो आत्माएं आती हैं मंदिर में, उनकी जो भावना है, भावनाएं तो चैतन्य आत्मा क्रिएट कर रही है ना, तो वो जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, वो जो पॉजिटिव एक्शन है, उस एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, उसके कारण उनकी कामना पूर्ण हो रही है। तो वो जो हम मन के अंदर ये जो पॉजिटिविटी रखते हैं कि हाँ मुझे मिलेगा, ना कहते ना पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करो, तो ये पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट किए जाते हैं जैसे ही मूर्ति के सामने आएंगे, पोतों ने क्या रखा है देती है तो भावना बैठ जाती है। तो वो जो माइंड पावरफुल वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करता है, उस एक्शन के कारण है ना, क्योंकि मिलता तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से है ना, तो वो जो श्रेष्ठ कर्म किया, क्या पॉजिटिव सोचा है ना, सोचना भी तो कर्म है, तो वो चीज जितना आपका निश्चय है, जिस जितना ज्यादा आपका माइंड डाइवर्ट नहीं है उस चीज के अंदर, संशय नहीं है, है ना, उतना ज्यादा आपको प्राप्ति होने लगती है, फिर आपका उस चीज में भावना बैठने लगती है। हाँ, तो वो तो हम बोलते ही हैं जब कोर्स कराते हैं कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम, बट इम्पोर्टेंट थिंग इज यहाँ वो कैसे काम करती है, और ये चीज थ्रू आउट वर्ल्ड चलती है, पर इम्पोर्टेंट क्या है कि जहां भी हमारा माइंड है ना निश्चय बुद्धि होकर लग जाता है, एक है हम जड़ चीज के ऊपर लगा रहे हैं और दूसरी चीज है कि चैतन्य परमात्मा पर लगा रहे हैं, तो वो कितना देगा, वो तो प्रैक्टिकली देगा, फिर जो किया उसका तो मिलेगा ही, तो यहां तो एक का हजार गुना हो जाता है फिर, है ना। तो इम्पोर्टेंट है कि जब हम अपने आप को ये स्वीकार करते हैं कि उन आत्माओं की भावनाएं इन जड़ मूर्तियों के अंदर कितनी है, और वो जड़ मूर्तियां हमारी यादगार हैं, तो हम किसका रिस्पॉन्स करते हैं, भावनाओं का ही रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे बाबा ने भी क्या देखा, हमारी भावना देखी ना, आज भी बाबा दिल वालों को ज्यादा पूछता है ना, तो दिल से बाबा को याद करते हैं ना, तो वो जो दिल का प्यार है वो बाबा को अच्छा लगता है, इसीलिए माताओं को बहुत याद करते हैं, वो दिमाग नहीं लगाती हैं ज्यादा, भक्ति मार्ग में भी माताएं बहुत हैं, ज्ञान मार्ग में भी माताएं बहुत हैं, क्योंकि दिमाग नहीं यूज करती हैं, दिल से काम लेती हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो भावना जो है, फीलिंग्स इंटरनली जो हमारी बहुत सुंदर, बाबा के प्रति जो दिल का प्यार है जिसको दिखाया नहीं जा सकता, जो बाबा ही कैच करता है, तो अभी भी हमने क्या किया, जैसे बाबा कई बार कहते हैं ना कि मुझे सुनाई नहीं देती है क्या आवाज, भक्तों की पुकार सुनाई नहीं देती है, कौन सुनेगा, यहां से सुनेंगे क्या नहीं। मुझे याद है एक बार हम दिल्ली में थे, तो जहां सेंटर था उसके दो गली छोड़कर एक माता का जगराता चल रहा था, वो तो रात भर चलेगा ना, जगरात जागरण होता है ना, तो वो चल रहा था, तो वो तो रात भर चलेगा, सोएंगे कैसे, वो तो बहुत तेज से चलता है ना, खूब अच्छा नॉइज होता है वो तो, अच्छा है ना, वहां तो सब आ जाते हैं, इसीलिए आस पड़ोस वाले तो वहीं बैठ जाते हैं, तो बहुत तेज से आवाज आती थी, तो नींद ही नहीं आ रही थी, अभी क्या करें, तो एक बुद्धि कहे कि क्या करें, अभी नींद तो आ नहीं रही है क्योंकि इतनी तेज हो, बहुत तेज आवाज है, एक ही गली छोड़ के दो गली छोड़ के था, तो बहुत ही ज्यादा थी, जैसे बगल में ही हो रहा हो, तो फिर ऐसे बाबा ने टचिंग कराई कि वो जागरण कर रहे हैं, आप देवी बन जाओ और उनकी मनोकामनाएं पूरी करो, तो प्रैक्टिकली बाबा ने बड़ा अच्छा अनुभव कराया, और सच में अब आपको तो सारी रात वो आपके गुणगान गा रहे हैं, है ना, प्रैक्टिकल हो रहा है, वो गुणगान गा रहे हैं, और मतलब बहाना तो ये हुआ कि नींद नहीं आ रही, तो बाबा ने भी ऐसे टच किया कि तुम्हें नींद आ भी कैसे सकती है ना, भक्त पुकार रहे हैं और देवी सो जाए वो तो हो ही नहीं सकता, फिर देखा कौन, है ना, वो तो कैसे देंगे तो वो तो देना है, तो प्रैक्टिकल बात आती हूँ, तो ऐसे ही जैसे ना, जैसे देवी की अष्टभुजा है तो उसको इमर्ज करके, जैसे देवताओं देवता बन के दे रहे हैं और वाइब्रेशंस निकाल के उन सभी जो भी है, अब इमर्ज करनी होती है ना सोल्स, तो बैठे तो सेंटर पे ही है पर इमर्ज करना होता है उनको, तो फिर जैसे देते जा रहे हैं देते जा रहे हो, इतना अच्छा अनुभव थ्रू आउट है ना, थ्रू आउट नाइट हुआ कि सच में ये चीज संभव है और यही है। ये जब अनुभव में आती है ना, तो कभी भी आप उन चीजों को फिर से इमर्ज कर सकते हो। एक बार अनुभव में आई ना, फिर से रीइमर्ज करना मुश्किल नहीं है, पर वो जो अनुभव है वो ऐसा ही अनुभव हो कि आप उसमें डूब जाओ। एक भी थॉट अगर ऐसा आया कि मैं तो बहन हूं, मुझे तो ये काम है, या मुझे सर्विस पे जाना है, या मुझे घर का, जरा सी भी आपको थोड़ी भी कॉन्शियसनेस आपने चेंज करी ना उस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आपके अनुभव में कमी पड़ जाएगी। और जैसे ही वहां अनुभव में कमी पड़ी ना, फिर आप कितना भी कोशिश करो ना, आप उस जो डाइवर्टेड अनुभव है या वो जो सेमी अनुभव है, आप उसी को ही स्वीकार कर लोगे कि हाँ ऐसा ही अनुभव होता है, लेकिन वो रियल अनुभव नहीं है, उसके अंदर मिक्स है, इस दुनिया का मिक्स है। तो आप टोटली उधर नहीं पहुंचे हो। जब आप टोटली वहीं पहुंच जाओगे, से कहते एकाग्रता की शक्ति, तो बस आपके सामने वो एक ही है, एक ही चीज के आगे है ना, एकाग्रता है ना, एक के आगे, अग्र यानी आगे हो, तो बस वही एक। तो वो जो बाबा हमें दिखाना चाहता है ये ही तुम हो, तो वो जब है उस चीज के आगे आ जाती है, बस ये मेरा आईना है ना, तो ये यही मेरा सही स्वरूप है। तो उन फीलिंग्स को इमर्ज करना, ये मेरी, मुझे याद है अभी हम थोड़े दिन पहले वेस्ट बंगाल गए, इवनिंग के अंदर क्लास थी, क्लास से पहले जब रूम से निकलने लगे तो चारों तरफ मंदिरों की घंटियां बजने लगी, और नुमा शाम का टाइम था, इतना अच्छा फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ। ये जो फीलिंग्स है ना, ये हम सबको करनी है, यही इम्पोर्टेंट है इस समय, क्योंकि अभी थ्योरी का काम खत्म हो चुका है, बहुत हो गई है। इम्पोर्टेंट है हम सब उन चीजों को प्रैक्टिकली अनुभव करें कि ये घंटियां किसकी हैं, ये उस मंदिर में नहीं बज रही हैं, ये मेरे लिए बज रही हैं, है ना। तो ये जो आवाजें हैं, फिर वहां के भाई ने कहा कि आप ऐसा करो, नुमा शाम के कमेंट्री कराओ, यही बोला कि आप कमेंट्री से योग कराओ, और इसी चीज को आप, मैंने उसे कुछ नहीं बताया कि मुझे ऐसे फीलिंग आई, पर आप इसी चीज को कमेंट्री में लो कि भक्त पुकार रहे हैं और हम उसको दे रहे हैं। तो जब हम अभी चैतन्य स्वरूप में देंगे, उसकी तो यादगारें हैं ना, वो तो स्टैचूज हैं, तो दिया है ना हमने, हम स्टैचूज को देखकर अपने उस चैतन्य स्वरूप में फिर से देख रहे हैं, उल्टा हो रहा है इनफैक्ट। स्टैचूज से हम चैतन्यता में आने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्चुअली में हमारे चैतन्यता की यादगार वो स्टैचूज हैं, तो हमें मदद कर रहे हैं, हमारे स्टैचूज हमें ही मदद कर रहे हैं, पर ये हम स्वीकार करें ना, तभी तो यादगारें बनेंगी ना। तो अभी है ना, दो मिनट के लिए अपने अपने मंदिर में हम सब देवी और देवताएं बैठ जाते हैं, है ना। देखें, सुंदर, अति सुंदर, अपने श्रृंगारे हुए इस चित्र को देखो, इस चित्र को और अपने चरित्र को मिला दो। इस चित्र में समा कर चैतन्य चित्र बन जाओ। देखो साक्षी होकर देखो सामने लंबी कतारों को, मनुष्य आत्माओं के दिल की पुकारों को, अनुभव करो उनकी इच्छाओं को, उनके जन्म जन्म की प्यास को, जिसके लिए पुकार रही है, कह रही है बार बार कि हे देवी, हे मेरे देव, तुम ही हो मेरे माता पिता, बन जाओ शिव शक्ति, बन जाओ। देखो शिव और शक्ति दोनों कंबाइन, और अपने अंतर के प्रकंपनों से निकलती हुई किरणों से आत्माओं को जीवदान दे दो। मेरे द्वारा इन सब आत्माओं को उनकी मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति करा रहे हैं। हर घर में, हर मंदिर में सर्व भक्तों की सर्व इच्छाएं पूर्ण हो रही है। तृप्ति हो रही है, मुक्ति हो रही है। ये समय है सत्य दर्शन कराने का, भक्तों की जयकारे की, भक्तों के नगाड़े आवाज से परे ले जाने का, ये मुक्ति देने का समय है। ओम शांति। अभी तो सबका चेहरा बदल गया है, पर ये तो सच है, क्योंकि बाबा ने हमें ये सब चित्र दिखाया है ना। अभी कौन से स्वरूप में आएंगे? बहुत सुंदर, पहले तो वर्तमान को भूल गए, फ्यूचर तो देखा पर संगम युग का ये चित्र सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इस समय तो वो हमारे साथ है जिसका साथ हमें कभी नहीं मिल पाया, और जिसके साथ के लिए तो 2500 साल लग गए, अभी भी कहां कितनों को मिला। तो ये जो संगम युग है, इसमें ये जो ब्राह्मण स्वरूप है, ब्राह्मण स्वरूप यानी परिवर्तन होने वाला स्वरूप, परिवर्तन करने वाला स्वरूप, ब्राह्मण यानी सर्वोच्च स्वरूप, चोटी, टॉप, टॉप पर रहकर सब नजर आता है। तो ये जो टॉप मोस्ट स्वरूप है हमारा, सर्वोच्च स्वरूप है, इसकी उच्च स्थिति को स्वीकार करना, जब इतने सब लोग हों, उस समय ना जब गृहस्थी में जाते हैं, नौकरी में जाते हैं, तो जब इतनी सारी मनुष्य आत्माएं आपके पास हों, तो अपने आप को उस पवित्र स्वरूप में स्वीकार करना, अपनी उस उच्च अवस्था को स्वीकार करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जब एक जैसे बहुत होते हैं ना, तो उनके साथ हम मिल जाते हैं, तो वो जो मिलावट होती है ना, वो हमारी प्रेजेंट जो स्वरूप है, उस स्वरूप को डाइल्यूट कर देती है। और वो जो डाइल्यूशन होती है, वो धीरे धीरे होती है ना, तो पता ही नहीं चलता कब कब वो चीज फिर से आ गई, वहीं आ गई जहां हम थे। ये प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि केवल वस्त्र नहीं है ब्राह्मण, ब्राह्मण तो इस दुनिया के अंदर आज भी वैरायटी है, पर जो सबसे टॉप मोस्ट ब्राह्मण है, वो दुनिया में भी कहते पुष्करणी ब्राह्मण है। तो वो क्या करते हैं, किसी के हाथ का खाना भी नहीं खाते, किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते, खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, पुष्कर में होते हैं, बड़ी पवित्र स्थान है ना, सभी लोग जाते हैं पुष्कर। तो वो पुष्करणी जो ब्राह्मण होते हैं, जो सच्चे ब्राह्मण होते हैं, आज की दुनिया में भी यादगार है, वो ब्राह्मण है हम, वो पवित्र ब्राह्मण हमारी यादगारें वो है। आजकल बहुत मिक्सचर हो गया है, भूल जाते हैं, क्यों कि दुनिया में रहते हैं ना, तो हवा पानी लगता है उनका, है ना, तो वो जैसा करते वैसे करने लग जाते हैं, सब चीजें वही, जो साइंस हो, साइंस के माध्यम से भी वैसी चीजें यूज करेंगे उसी तरीके से, है ना, चाहे स्टाइल हो ना बोलने का करने का, तो सोचते हैं वैसे ही करते हैं ना, उसमें क्या है, मिलकर करना है ना, नहीं। तो वो जो घर में रह रहे हैं, बाकी लोग जिस तरीके से बातचीत करते हैं, हम भी उस फ्लो में, फर्क क्या रह गया? मुझे याद है एक बारी, जब बहुत ज्यादा कारोबार हो जाता है ना, तो कई बारी ऐसा लगता है कि बहुत प्रेशर हो गया माइंड के ऊपर, तो अंडर प्रेशर क्या होता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो फिर वो जो पुराने संस्कार होते हैं ना, उस समय वो वैसा ही हम बिहेव करने लग जाते हैं, क्यों, काम बहुत ज्यादा हो जाता है, इधर से सब जगह से अटैक, तो फिर वो इंसान सोचता है कि अभी कर्म कॉन्शियस हो जाता है, टोटल कर्म कॉन्शियस, तो काम इंपॉर्टेंट है, बाकी सोल सब फूल गए, अभी तो है बाबा का ही काम। और ये भी बुद्धि में है कि बाबा का ही काम कर रही हूँ, ये भी याद है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन वो जो प्रेशर जनरेट होता है ना इधर से, तो वो क्या करता है, हमारे अटेंशन को डाइवर्ट करता है और टेंशन क्रिएट करता है। अटेंशन डाइवर्ट तो टेंशन आ जाती है ना, वो तो हम सबको सिखाते ही है, है ना। तो टेंशन आ गई तो यू आर अंडर टेंशन, तो दुनिया में क्या होता है, यही होता है, यही होता है ना। वो लोगों का भी यही हाल होता है कि इधर से बच्चे हैं, इधर से वाइफ है, इधर से ऑफिस है, उधर से वो चीज नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, वो भी टेंशन में है, हम भी टेंशन में है, फर्क क्या रह गया। सत्ययुग और कलयुग में फर्क क्या है, यही तो फर्क है। सोल कॉन्शियस है, कॉन्शियसनेस का फर्क है। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि हम ही ऐसे हो जाते हैं, हम ही ऐसे हो जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये काम तो प्रैक्टिकली हुआ ही पड़ा है। बाबा क्या कहते हैं, ये सारे कारोबार जो कह रहे हैं ना ये करने, ये काम हुए पड़े हैं, पता है ना हमको, सब काम हुआ पड़ा है। ये जो हम घर की भी बात करते हैं ना, ये सब हुआ पड़ा है ना। कौन कर रहा है, हम निमित्त हैं, काम हुए पड़े हैं। मार्क्स किस पर हैं, आपके माइंड की स्टेज की। माइंड की स्टेज कैसी है आपकी, काम तो बाबा का है, काम तो हुआ ही पड़ा है, आप इंस्ट्रूमेंट हो, इंस्ट्रूमेंट जो मैं हूं, मेरे मन की स्थिति पर मुझे मार्क्स मिल रहे हैं, उस मार्क्स के आधार पर मुझे सत्ययुग में पद मिल रहा है। तो काम तो कुछ भी है, इंपॉर्टेंट इज मन की स्थिति। और वो चाहे हम कहीं भी हैं, चाहे घर में है, चाहे सेंटर पे है, चाहे ऑफिस में है, कहीं भी हैं, ब्राह्मण बन गए, आपकी मार्किंग शुरू हो गई। तो अटेंशन काम पर जितना दे रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने माइंड की स्टेज पर अटेंशन देना, क्योंकि उसी की ही मार्किंग हो रही है, उसी की मार्किंग हो रही है। और ये ब्राह्मण जीवन में ये, क्योंकि बीच है ना, तो जब जैसे समझो सर्कल है, यहां खड़े होंगे ना तो कभी यहां फिसलेंगे, कभी यहां फिसलेंगे, है ना, तो वो चलता है। पर वही है, वो धार पे चलना है। इम्पॉर्टेंट इज अटेंशन। थोड़ा सा गए तो फिसल गए, थोड़ा सा भी, यही ब्राह्मण जीवन है। अभी कितना है, किसी को ज्ञान बचपन में मिला है, किसी को यूथ में मिला है, किसी को जब यूथ भी स्टेज कंप्लीट हो गई फिर मिला है, किसी को तो आफ्टर 60 भी मिला है। तो जितना भी मिला है तभी से हमारी मार्किंग स्टार्ट हो जाती है और उस मार्किंग के आधार पर हमको पद मिल रहा है। इससे फर्क नहीं पड़ता मैं क्या काम कर रही हूं, क्योंकि काम तो बाबा का है, खाना भी बन रहा है तो वो भी बाबा के बच्चों के लिए बन रहा है। तो इम्पोर्टेंट है कि अटेंशन देना। तो ये ब्राह्मण जीवन के अंदर ये जो हमारी प्योरिटी है उसमें मिक्सचरिटी ना हो जाए, वो लोगों के संकल्प विकल्प, इधर की बातें उधर की बातें, वो मिक्स ना हो जाए, तो वो हमारी पवित्रता को भंग करती है। हमारी जो कंसंट्रेशन पावर है ना, उसको डाइल्यूट करती है। यहां अटेंशन देना है कि वो चीज कंसंट्रेशन मेरी भंग ना हो जाए। मैं वहां जा रही हूं और वो धार कौन सी है, श्रीमत। तो उस श्रीमत की धार पर है ना, वो जो मेरा लक्ष्य है ना, वो जो मेरे लक्षण है, है ना, उसको देखते हुए लक्ष्मण रेखा ना पास करो, है ना, उसको पार किया तो फिर तो वहां चली जाऊंगी। इंपॉर्टेंट ये ब्राह्मण जीवन की बहुत बहुत सुंदर स्टेज है जहाँ केवल मैं और बाबा, वो स्थिति जो आज बाबा हमसे बहुत बार बार देख देख कर की वो हमारी वो ओरिजिनल स्टेज को बार बार देखते हैं बाबा कि देखो मेरे बच्चे मेरे साथ है, मैं बाबा की और बाबा मेरा, मेरे दिल में बाबा और बाबा के दिल में तो है ही बच्चे। तो वो जो दिल दिल जो है ना, आजकल हार्ट अटैक भी बहुत होते, क्यों? क्यों दिल तो बहुत उसे लगाई है ना, इसीलिए दिक्कत है। तो बाबा से लगाते तो नहीं होता था, है ना, तो सबसे ज्यादा है ना। तो अभी एक मिनट के लिए हम अपने ब्राह्मण स्वरूप में आते हैं और फिर साथ ही फरिश्ता स्वरूप की भी ड्रिल करते हैं, है ना। उसके फरिश्ता का तो बहुत लंबा है, तो अभी केवल 5 स्वरूप कंप्लीट करते हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता स्वरूप, सभी महसूस करें इस शरीर में मैं आत्मा, पवित्र, शुद्ध, मन बुद्धि और संस्कारों सहित विराजमान हूं। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हूं। अपने अंतर की सशक्त स्थिति को महसूस करें। स्वयं ब्रह्मा देखो, ब्रह्मा बाबा मेरे समक्ष है। महसूस करें कि बाबा मुझे अपने जैसा बनाना चाहते हैं, मुझे देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से मेरे अंतर की सृष्टि, मुझे बदलती नजर आती है। मेरे अंतर में परिवर्तन आ गया है। शक्ति, शांति और प्यार से भरपूर है ये दृष्टि। डायमंड जैसी चमक आ गई है। मैं हीरे तुल्य ब्राह्मण हूं। देखो ब्रह्मा बाबा मेरा हाथ पकड़ के मुझे ऊपर ले जाना चाहते हैं। चलो बाबा के साथ अपने आसपास अपने लाइट के शरीर को देखो। और ब्रह्मा बाबा के साथ उड़ो, ये लाइट का मेरा चित्र बहुत खूबसूरत है, ये ड्रेस चमकीली लाइट, और मैं अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में, पवित्र स्वरूप में उड़ रही हूं, ऊपर चारों तरफ लाइट ही लाइट, और देखो नीचे संपूर्ण सृष्टि को, देखो दो इनको, इस दुनिया को अपने महादानी स्वरूप से शांति के किरणें दो। देखो बाबा मुझे देना सिखाता है, मेरी दृष्टि से निकलते किरणें समस्त पृथ्वी को पवित्र कर रही है। समुद्र पानी को, लहरों को, देखो फिर से पवित्र कर रही है। शांत कर दो प्रकृति के पंच तत्वों को, समस्त आकाश में इन किरणों को फैलने दो। धरती पे चलती वायु की तरंगों को शुद्ध कर दो। अग्नि को भी शांत कर दो। शुद्धिकरण का ये समय है, हम सबकी अंतर की शुद्धता समस्त विश्व को, समस्त सृष्टि को पवित्र करती जा रही है। ये मेरा सत्य शक्तिशाली पवित्र स्वरूप फरिश्ता स्वरूप है। मैं फरिश्ता इस धरती पर भी अपने सुकर्मों से अपने पांचों स्वरूपों का दिग्दर्शन कराऊंगा। आ जाओ पुनः इस सृष्टि पर, बाबा का हाथ पकड़ के इन पंच तत्वों में प्रवेश कर, अपने हर कर्मों में है हमको।